ईरानी संस्कृति और कला।
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम ईरानी संस्कृति और कला की एक नकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहलदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, आपको ज्ञात होगा कि ईरान की ऐतिहासिक इमारतों और उनकी वास्तुकला का परिचय कराते हुए हम ईरानी मस्जिदों के परिचय तक पहुँचे हैं और पिछले कार्यक्रम में हमने संक्षेप में मस्जिद की इमारत की ओर संकेत किया था। आज के कार्यक्रम में हम पिछली चर्चा को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम कनाडा के लेखक राल्फ बेनी के उस कथन को बयान करते हैं जिसमें उन्होंने इमाम रजा अलैहिस्सलाम के पावन रोजे को देखने के बाद अपनी किताब ब्रिज ऑफ टर्कवाइज में लिखा है। मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे में बड़े बड़े सुंदर हाल हैं जो जरी के चारों ओर हैं और वे आध्यात्मिक आकर्षण से भरे हुए हैं। वहाँ हर आदमी शांति का आभास करता है। गुंबद के बीच के स्थान को सुंदर और रंग बिरंगी टाइलों से सुसज्जित किया गया है। इंसान आभास करता है कि इस पवित्रतम स्थल में ईश्वरीय चमत्कार होने वाला है और इंसान के सामने स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। इंसान महान ईश्वर के मुकाबले में स्वयं को तुच्छ पाता है और समझता है और ईश्वरीय परिज्ञान का प्रकाश उसके दिल में चमकने लगता है और जो कुछ मैंने इस दर्शनीय स्थल में देखा उसका उल्लेख किसी भी किताब में नहीं किया जा सकता है।
ईरान की जो इस्लामी सभ्यता है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों का मिश्रण है और उनमें सबसे स्पष्ट वास्तुकला है। वास्तुकला ऐसी चीज़ है जिसे अभूतपूर्व रूप से मस्जिदों में देखा जा सकता है। मस्जिद वो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा स्थल है और उसकी विभिन्न उपयोगिता मस्जिद को गिरजाघर जैसे उपासना स्थलों से अलग करती है।
मस्जिद शब्द अरबी भाषा के सजदा शब्द से बना है और उसका अर्थ सजदा और उपासना करने की जगह है। मस्जिद पवित्र कुरान की आयतों में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि समस्त चीज़ें महान ईश्वर का गुणगान और उसका सजदा कर रही हैं। सूरह नहल की 48वीं आयत में आया है, क्या उन्होंने ईश्वर की उन रचनाओं व सृष्टियों को नहीं देखा जिनकी छाया उनके दाहिनी और बाईं ओर चलती है और वे पूर्ण विनम्रता के साथ ईश्वर का सजदा कर रही हैं।
सजदा नमाज का अनिवार्य भाग और महान व सर्वसमर्थ ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होने का प्रतीक है। इस प्रकार मस्जिद का अर्थ सजदा करने का स्थान है। इस्लाम में मस्जिद वो स्थान है जहाँ इंसान अपने पालनहार से सीधा संपर्क करता है। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि जो ये कहा गया है कि मस्जिद में इंसान अपने पालनहार से सीधा संपर्क करता है, इसका ये मतलब नहीं है मस्जिद में ही इंसान अपने विधाता से संपर्क कर सकता है, बल्कि इंसान जहाँ चाहे अपने रचयिता से संपर्क कर सकता है और कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ वो न हो। हाँ, ये अलग बात है कि इसके लिए मस्जिद एक अच्छा स्थान है और वो एक ईश्वरवाद के मूल्यों का प्रतिबिंबन स्थल है।
मोहम्मद करीम निया अपनी किताब ईरान में इस्लामी वास्तुकला में लिखते हैं, मस्जिद दूसरे उपासना स्थलों पर वही श्रेष्ठता रखती है जो श्रेष्ठता इस्लाम दूसरे धर्मों पर रखता है। इस्लामी कला विशेषकर वास्तुकला का आधार जन भावना है और इस्लामी वास्तुकला आत्मनिर्भर है। ये वे विशेषताएँ हैं जिन्हें मस्जिद में देखा जा सकता है।
मस्जिद वो स्थान है जहाँ उपासना की जाती है, साथ ही वो एक सांस्कृतिक स्थल है और इस्लाम के आरंभ से अब तक इस्लामी राष्ट्रों के ध्यान का केंद्र रही है। पैगंबर इस्लाम के काल में मस्जिद में असहाय लोगों और यात्रियों को ठहराया जाता था। उसमें सभाएं होती थीं और धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थीं। बाद में इस स्थान से ज्ञान की गतिविधियाँ आरम्भ हुईं और उनमें विकास हुआ और वो परवान चढ़ी, परंतु पूरे इतिहास में मस्जिद अपने पालनहार से संपर्क करने का स्थल रही है।
अमेरिकी ईरान विशेषज्ञ आर्थर पोप इस्लामी वास्तुकला की बहस में मस्जिद को जन इमारत कहते हैं, जिसने राजाओं महाराजाओं के भव्य महलों के मुकाबले में अपनी शान बाकी रखी है। नगरों के विस्तृत हो जाने और मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण मस्जिद की आवश्यकता अधिक हो गई है और बहुत से स्थानों पर लोगों की वित्तीय क्षमता के दृष्टिगत मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया है, परंतु बड़ी मस्जिदों का निर्माण प्रायः शासक कराते हैं या जन कल्याण करने वाले लोग कराते हैं। इस कारण मस्जिदों और उनकी वास्तुकला को इस प्रकार बांटा जा सकता है।
सुल्तानी मस्जिदें इन प्रकार की मस्जिदों के नाम से ही ज्ञात हैं कि इन मस्जिदों का निर्माण अधिकांश शासन कराते थे। मस्जिदें आयानी इन मस्जिदों का निर्माण अधिकांश जन कल्याण करने वाले लोग कराते थे और उस पर अपना नाम लिखवा देते थे, और जिन मस्जिदों का निर्माण लोग मिलकर कराते थे अधिकांश उनका नाम धार्मिक और इमामों के नाम पर होता था।
मस्जिदों का जो आध्यात्मिक वातावरण होता है उसकी मांग यह है कि मस्जिद का निर्माण विशेष व योग्य ढंग से किया जाए। मिस्री विचारक सैयद कुतुब का मानना है कि इसी आध्यात्मिक वातावरण के कारण मस्जिदों में वास्तुकला के सुंदरतम आयाम अस्तित्व में आए। बहुत से शोधकर्ताओं का मानना है कि धार्मिक कला का आधार किसी चीज़ की ओर संकेत होता है, विशेषकर इस्लामी कला जिसका स्रोत पवित्र कुरान है। अतः इस्लामी कला में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो किसी गहरे अर्थ की ओर सूचक होती हैं।
धार्मिक स्थलों में इस्लामी वास्तुकला का एक नमूना उनके प्रवेश द्वार हैं। बहुत सी मस्जिदों के प्रवेश द्वार बड़े और ऊँचे होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मस्जिदों के दरवाज़ों का बड़ा और ऊंचा होना इस बात का सूचक है कि महान ईश्वर की कृपा विस्तृत और असीमित है। इंसान मस्जिद के बड़े दरवाज़ों को देखकर इस बात का आभास करता है कि जो लोग मस्जिद में प्रवेश कर रहे हैं उन सब पर ईश्वर की कृपा होगी। नमाज के समय ईश्वरीय कृपा के द्वार खुल जाते हैं और अजान देकर लोगों को मुक्ति व कल्याण की ओर बुलाया जाता है।
मस्जिदों की वास्तुकला में जो प्रवेश भाग होते हैं उनका बहुत महत्व है, क्योंकि ईरान की प्राचीन वास्तुकला के महत्वपूर्ण भाग को उसमें देखा जा सकता है। आरंभ में मस्जिदों के इस भाग को दरगाह कहते थे और धीरे धीरे उसे सात भागों में बांट दिया गया, और उन सात भागों के नाम इस प्रकार हैं: जुलो खान, पिश्ताक, दरगाह, हश्ती, दालान, ऐवान और साबात।
समय बीतने के साथ साथ मस्जिद का जो प्रवेश भाग था वो केवल संपर्क भाग नहीं रहा, बल्कि उसका सांस्कृतिक और सामाजिक प्रयोग भी होने लगा। उदाहरण के तौर पर मस्जिद के सामने जोलो खान का निर्माण किया जाता था और उसे इस प्रकार बनाया जाता था कि वो सड़क या चौराहे से मिला रहे। ये वातावरण मस्जिद में प्रवेश के लिए अत्यधिक आकर्षण उत्पन्न करता था। तेहरान में मस्जिद इमाम जैसी कुछ मस्जिदों के सामने जो जोलो खान हैं उनमें कुछ दुकानों का निर्माण किया गया और धीरे धीरे ये वातावरण मस्जिद और सड़क के मध्य संपर्क स्थल में परिवर्तित हो गया। जोलो खान में प्रवेश द्वार नहीं होते थे और उसकी दीवारें सादी होती थीं, जबकि उसका वातावरण एक छोटे आंगन की भांति होता था।
ईरान के इस्फहान नगर की जो मस्जिद इमाम है उसमें जो जोलो खान है उसके अंदर विश्राम के लिए पत्थर के चबूतरे बने हुए हैं और उसके बीच में पानी का एक छोटा हौज भी है। जोलो खान के बाद पिश्ताक होता है, जिसका आधा भाग दालान की भांति खुला रहता है जबकि आधा भाग ढका होता था, और उसका निर्माण मस्जिद के प्रवेश द्वार के अंदर किया जाता था। पिश्ताक की ऊंचाई मस्जिद की दीवारों से भी अधिक होती है और वो मस्जिद के महत्व और उसकी स्थिति का सूचक होता है। आमतौर पर जिन मस्जिदों में पिश्ताक हैं उन्हें सुंदर टाइलों से सुसज्जित किया गया है और उनमें शिलालेख भी लगाए गए हैं जिन पर मस्जिद का निर्माण कराने वाले का नाम होता है। मस्जिद के निर्माण की तारीख होती है और इसी तरह उसमें कुछ शिलालेख ऐसे होते थे जिन पर पवित्र कुरान की आयतें लिखी होती थीं। कुछ अवसरों पर मस्जिदों के इस भाग में सार्वजनिक आदेशों को लिखा जाता था ताकि सब लोग उन्हें देख व पढ़ लें।
काशान नगर की मैदान मस्जिद का निर्माण 868 हिजरी कमरी में किया गया था और बहुत अधिक शिलालेखों और पीठताख की दृष्टि से वो नमूना है। इसमें जो शिलालेख हैं उसमें 10 ऐतिहासिक आदेश हैं और उनका संबंध 16वीं और 17वीं शताब्दी से है। इन शिलालेखों में जो बातें लिखी गई हैं वे सार्वजनिक, सामाजिक और आर्थिक हैं।
बहुत सी मस्जिदों के प्रवेश द्वार पर जो शिलालेख लगे हैं उनमें विभिन्न विषयों के बारे में लिखा गया है। कुछ को नमाज के बारे में पवित्र कुरान की आयतों से सुसज्जित किया गया है, जबकि कुछ अन्य में मस्जिद के निर्माण के महत्व और ज्ञान प्राप्त करने जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कुछ शिलालेखों में नमाज के बारे में पैगम्बर इस्लाम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कथनों को लिखा गया है, जबकि कुछ दूसरे में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता और पैगम्बर इस्लाम के पवित्र परिजनों से प्रेम के महत्व का वर्णन किया गया है।